नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने उन गुणों को समझा जो हमारे जीवन को मंगलदायी बनाते हैं। गुरुजी ने हमें एक और गुण बताया, वो है बहुश्रुत होना। आज हम उनसे जानेंगे कि ये बात धन कमाने के लिए तो ठीक है, पर ये हमारे निजी जीवन में सुख शांति लाने के लिए कैसे लाभदायी हो सकती है। आइए मिलते हैं विपश्यना आचार्य श्री गोयनका जी से।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी, बहुश्रुत यानी पढ़ा लिखा होने से हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आ सकती है?
बेटी, सुख शांति आए इसके लिए भगवान ने जो छठा उत्तम मंगल दिया, अत्तसम्मा पणिधीच, माने आत्मदर्शन करना सीखें, आत्मनिरीक्षण करना सीखें, आत्म परीक्षण करना सीखें, आत्मशोधन करना सीखें। ये पढ़ाई के साथ साथ चले। एक और पढ़ाई लिखाई हो रही है, क्योंकि हमें गृहस्थ होने के नाते अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अन्य लोग जो हम पर आश्रित हैं उनके भरण पोषण के लिए पढ़ना लिखना, कोई शिल्प में परफेक्ट होना, दक्ष होना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ चरित्र निर्माण साथ साथ चले। स्कूलों में एक पीरियड देते हैं, उसे पीटी कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग। मैं कहूँ एक पीरियड भले छोटा ही सही, एमटी का होना चाहिए, मेंटल ट्रेनिंग का। उस समय सारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियाँ बैठ करके मन को वश में करना सीखें, उससे कई लाभ। एक तो पढ़ाई लिखाई में भी लाभ मिलना शुरू हो जाए, स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की शक्ति बढ़ती है, और इससे बड़ी बात कि मन वश में करना सीखते हैं। जो स्मरण शक्ति बढ़ती है उसके आश्चर्यजनक उदाहरण हमारे सामने हैं। भगवान के परिनिर्वाण के बाद जो प्रमुख भिक्षु थे, उन्होंने सोचा कि भगवान की सारी वाणी अगर हम संग्रहित कर दें, एक साथ इकट्ठी कर दें, तो वो प्रमाणिक रूप में जीवित रहेगी और आगे पीढ़ियों के लिए सदियों तक काम आएगी लोगों के। तो 500 भिक्षुओं का एक संगायन हुआ। संगायन हुआ माने साथ बैठ करके उसका पाठ करते हैं वाणी का। समय समय पर जो भिक्षु इसको याद रखते हैं, याद रखने की परंपरा चल रही है। भगवान की वाणी के तीन हिस्से बने, एको का सुत्त पिटक, एको का विनय पिटक, एको का अभिधम्म पिटक, और तीनों मिलकर हुए त्रिपिटक। तो सुत्त पिटक सामान्य लोगों के लिए, विनय पिटक भिक्षुओं के लिए, अभिधम्म पिटक तो बहुत गहन चित्त और शरीर का संबंध, उससे कैसे कर्मों का निर्माण होता है, कैसे बढ़ते हैं, कैसे कर्मों को, कर्म संस्कारों को दूर किया जा सकता है, कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, बहुत गंभीर विषय वो अभिधम्म पिटक। तो कुछ लोग सुत्त को याद धरें, केवल सुत्त पिटक को, तो सुत्तधर कहलाएं, विनय को याद करें विनयधर कहलाएं, अभिधम्म को याद करें अभिधम्मधर कहलाएं, कोई तीनों को याद करे वो त्रिपिटकधर कहलाए। ये परंपरा भारत की पुरानी परंपरा, विश्व में एक ऐसी परंपरा जिसने कंठस्थ याद करके अपने साहित्य को शुद्ध रूप में कायम रखा, और हजारों वर्ष तक, ये नहीं कोई एक दो पीढ़ी की बात है। तो आज भी बर्मा में 4 ऐसे भिक्षु हैं जो त्रिपिटकधर हैं, पूरा त्रिपिटक उनको याद है। तो इस परंपरा का, इस स्मरण शक्ति का ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हमारे भारत को फिर मिली ये विद्या, मिली वापस विपश्यना विद्या, मिली वाणी मिली, तो ये याददाश्त के बल के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा लाभ अपने स्मरण शक्ति बढ़ाने का, इस विद्या से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कुछ लोगों को अनेक जन्मों से स्मरण शक्ति अच्छी है तो और बढ़ाव खाती है। अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए इस विद्या का अत्तसम्मा परिधि है। अपने मन को वश में करो, अपना निरीक्षण करो, अपना परीक्षण करो, कोई सुधार करना हो तो सुधार करो। ये सारी बातें बहुत कल्याण की बातें हैं, ये धर्म के साथ जुड़नी चाहिए, ये इसलिए इसको मंगल में उत्तम मंगल एक माना गया।
शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें इतनी अच्छी बात बताई। हमें तो इन भिक्षुओं का खासकर आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से इतने अरसे तक उन्होंने ये परंपरा बनाए रखी। गुरुजी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, कई बार संतजन बहुश्रुत होने की यानी ज्यादा पढ़ा लिखा होने की निंदा करते हैं।
हाँ, उनका निंदा करना भी स्वाभाविक है, समझ में आता है। क्यों करते हैं कि जब बहुत पढ़ लिख करके आदमी के मन में बड़ा गर्व जागता है, अभिमान जागता है, अरे मैं इतना पढ़ा लिखा, मुझको देखो इतना साहित्य कंठस्थ याद है, इत्यादि इत्यादि अपने पांडित्य लोगों के सामने प्रदर्शन करे, चरित्र कुछ नहीं, जीवन में धर्म उतरा नहीं, तो लोग देखते हैं कि पढ़ना लिखना क्या काम आया इस आदमी के। तो महत्व तो चरित्र को दिया जाना चाहिए। अगर चरित्र नहीं है तो पढ़ा लिखा भी काम की बात नहीं है, गर्व पैदा करेगा। पढ़े लिखे अवश्य, लेकिन उसके साथ साथ अपने चरित्र को बनाए। एक घटना भगवान के जीवन काल में, एक राज पुरोहित ने देखा, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान, उसने देखा अपने राजा को परीक्षा करके देखें कि ये मेरा जो सम्मान करता है, मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए सम्मान करता है कि मैं चरित्रवान हूं, चरित्रवान भी था कि मेरे चरित्रवान होने की वजह से सम्मान करता है, परीक्षा करें। तो उसने कहीं मार्केट में जाकर के किसी ज्वेलर की दुकान से कुछ गहना उठा लिया, पकड़ा गया, केस आया, राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा दंड मिलेगा, तूने चोरी की ना, तुझे दंड मिलेगा। राज पुरोहित बड़ा खुश हुआ, हमने इसीलिए किया था ये कि आपकी परीक्षा करनी थी कि आप मेरे पढ़े लिखे होने की वजह सम्मान करते हैं कि मेरे चरित्रवान होने की वजह सम्मान करते हैं। मेरा चरित्र ठीक नहीं है तो हजार पढ़ा लिखा हो आप मुझे दंड देंगे। तो भारत में एक समय ऐसा था जबकि धर्म की महत्ता, और ये हमारे लिए बड़ा गौरव का समय कि धर्म की महत्ता है, चरित्र की महत्ता है, पढ़ना लिखना उसमें सहायक होता है, लेकिन केवल पढ़ना लिखना ही हो और चरित्र नहीं हो तो काम की बात नहीं है। इसलिए संतों ने कभी कभी बुरा कहा उसे, बहुत पढ़े लिखे केवल विवाद करें, केवल विवाद करें। तो अपने यहाँ के सदगुरु नानक देव जी, उन्होंने ये सारी स्थिति देख करके कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित वाद बखाने, वाद करता है पढ़ करके, विवाद करता है पढ़ करके, वो भीतर हुंदी वस्तु न जाने, भीतर की जो वस्तु है उसको जानता ही नहीं, क्योंकि भीतर जाने की विद्या ही नहीं सीखी उसने, केवल याद किया और याद करके बखान करता है, विवाद करता है। भीतर की वस्तु यानी हृदय वस्तु, हृदय का एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें सारा ज्ञान भरा पड़ा है, जिसमें हमको चरित्रवान बनाने की का एक साधन उसके अंदर है, उसको जानता ही नहीं। तो इसलिए निंदा होती है कि केवल पढ़ लिया लेकिन तूने अपने जीवन में धर्म उतारा नहीं। भगवान बुद्ध ने एक घटना सुनाई अपने पूर्व जन्म की। एक बहुत बड़ा विद्वान युवक, श्वेत केतु नाम का ब्राह्मण, तक्षशिला में जाके पढ़ कर आया, बहुत विद्वान, और विद्वान के साथ साथ बड़ा गर्व भी हो गया, बहुत गर्व। तो उसने अपना एक विद्यालय खोला, विद्यार्थियों को पढ़ाता है और बड़ा गर्व भी है, साथ साथ एक गर्व और भी है उसको कि ब्राह्मणों में भी उद्दिच्च ब्राह्मण, माने बहुत ऊंची कोटि का ब्राह्मण, ऊंची जात का ब्राह्मण, बड़ा उसको नशा है इस बात का। तो एक दिन वो अपने विद्यालय से कहीं दूर जा रहा था तो सामने से देखा एक चंडाल आ रहा है, चंडाल आ रहा है, और संयोग ऐसा कि चंडाल जहां से आ रहा है वहां से हवा आ रही है। तो चीखता है, अरे तुझको छू करके ये हवा आती है और मुझे छू रही है, मुझको अपवित्र कर दिया। तो चीखता है, चिल्लाता है, वो कहता है चंडाल, चंडाल समझदार था, वो भी विद्वान था, धर्म को समझता था, तो कहता है अरे बेकार, तू गर्व करता है, तुझको कुछ ज्ञान भी है क्या, मैं तो उससे प्रश्न पूछूंगा, अगर तू प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सका तो मेरी टांगों के नीचे से निकलना पड़ेगा। बड़ी अपमान की बात किसी चंडाल के टांगों से नीचे कोई ब्राह्मण निकले, बड़ी शर्म की बात। पूछना, क्या पूछना है, मैं सब जानता हूं। कहता है दिशाएं कितनी होती है, क्या क्या दिशा है। अरे ये कोई प्रश्न हुआ, बच्चे भी जानते हैं चार दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या पूछते हो इसमें। नहीं तुझे पूरा ज्ञान नहीं है, ये तो सांसारिक बात है पूर्व पश्चिम, धर्म की बात अलग होती है। तो समझाया कि पूर्व माता पिता का अमुक दिशा इसका, अमुक दिशा इसका, हमारे जो पूज्य हैं उनके लिए छह दिशाएं हैं, छह दिशाएं हैं, एक ऊपर की एक नीचे की, चार ये। तो सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसको सच माने। तो राजा का जो पुरोहित था उस समय का, वो बड़ा विद्वान चरित्रवान, उसके पास गया केस। उसने कहा ये चंडाल जो कहता वो ठीक है, तेरी गलती है। तो कोरे पढ़ लेने से नहीं हुआ, बात समझा नहीं ना, जीवन में उतरे तो सारी बात समझे। उसको घमंड है, उस अहंकार के मारे वो उस चंडाल से घृणा करता है, अपने को बहुत ऊंची जात का समझता है और उसके साथ साथ अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझता है, तो उसको नीचे देखना पड़ा। तो ये भारत में समय समय पर इस बात को लोगों ने दोहराया कि तुम्हारे जीवन में धर्म उतरना चाहिए, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ करके अभिमान जगा लोगे तो चरित्र तुम्हारा कहीं गया। तो इसलिए अगर किसी ने निंदा की तो ऐसे लोगों की निंदा की जिन्होंने पढ़ने का गर्व तो जगा लिया, चरित्र आया नहीं उनके जीवन में। तो ये बचपन से ही हमारे विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पढ़े लिखेंगे, शिल्प भी सीखेंगे, इसके साथ साथ अपना चरित्र का निर्माण भी करेंगे, और उसके लिए ये विद्या है अत्समापनिधिजे।
शुक्रिया गुरुजी। अब हम आपसे अगले मंगल के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन अभी नहीं, एक ब्रेक के बाद। तो दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं तुरंत। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है ऊर्जा में। गुरुजी अब हम आपसे अगले मंगल के बारे में जानना चाहेंगे।
अगला मंगल है बेटी शिल्प, माने कोई ऐसी विद्या जिससे हमारी आजीविका ठीक चले। पढ़ लिख लिया बहुत, लेकिन आजीविका के लिए क्या करेगा, केवल पढ़ लिखने से नहीं होता, किताबी कीड़ा बन गया। तो एक ये मंगल बहुत आवश्यक है कि अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई शिल्प सीखे। हर गृहस्थ को शिल्प में परफेक्ट होना चाहिए ताकि वो आजीविका में कहीं पीछे न रह जाए और विश्व की शिल्प की विद्या में अग्रणी रहे, आगे रहे। अब आज के युग में आज का शिल्प जैसे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर बनाना है, और ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्निक है, इस तरह की जो बातें हैं, इसमें भी आगे रहना चाहिए। तो हमारी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शिल्प जुड़ना चाहिए, तो समझो कि हमारा उत्तम मंगल साथ जुड़ गया हमारे। तो भगवान देखते हैं गृहस्थ के लिए, सन्यासी को आवश्यक नहीं है, भिक्षु को आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना, कोई आजीविका का काम नहीं करना, जो कुछ भिक्षा मिल जाएगा उससे उसका गुजारा होता है। तो कभी कभी कोई भिक्षु आपस में बात भी करते किसी शिल्प के, भगवान रोकते थे, अरे तुमने घर बार छोड़ा है बहुत ऊंचा काम करने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए तुम्हें विद्या दी है, अपना समय उसमें लगाओ। और बात भी ठीक है, उनको क्या जरूरत शस्त्र इत्यादि की, क्या जरूरत उस बात करने की, युद्ध की विद्या की बात करने की क्या जरूरत उनको, और बाकी व्यापार की क्या जरूरत उनको बात करने की। लेकिन गृहस्थ है तो ये सारी बातें जरूरी है। तो जब गृहस्थ को सिखाते हैं तो कहते हैं बहुश्रुत होने के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई होने के साथ साथ, तुमको शिल्प में भी परफेक्ट होना पड़ेगा, आर्ट और साइंस दोनों में तुमको परफेक्ट होना पड़ेगा, ताकि तुम अच्छी जीविका अपना करके सुख का जीवन जी सको, शांति का जीवन जी सको।
गुरुजी क्या सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ने से पहले शस्त्र विद्या सीखी थी?
जरूर सीखी थी बेटी, उस समय जो एक परंपरा थी, अभी राजकुमार है, अन्य गृहस्थ भी अपने बच्चों को जहां पढ़ाई लिखाई सिखाते थे वहां शिल्प कला सिखाते थे। तो ये राजकुमार है तो इसको युद्ध विद्या सिखाई, तो ऐसा परफेक्ट धनुर्धर था कि लोगों ने उसकी परीक्षा ली कि इसको क्या आता है, देखें इसको कोई अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं कि नहीं, परीक्षा हुई। तो उस समय के जो बड़े बड़े बाण चलाने वाले थे, धनुष चलाने वाले थे, वो एकत्र हुए, उन्होंने अपनी अपनी कला दिखाई। तो एक होती है कि शब्द कहाँ से आया, उधर तीर चलाओ। एक बहुत सूक्ष्म बाल है, ऐसा तीर चलाओ कि बाल भी टूट जाए। इस तरह की कई विद्याएं थी, लेकिन इन्होंने छह विद्या अपनी दिखाई धनुष चलाने की। तो छह विद्याओं में परफेक्ट था, इसलिए दिखाई ना, तो उनमें परफेक्ट था। फिर उसके बाद जब लोगों को धर्म सिखाते हैं तो राजा को अपने देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए उसका विवरण पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है कि कितनी जानकारी है इस व्यक्ति को। तो सारा कुछ उन्हें समझा, देश की रक्षा के लिए क्या करें, सरहद पर किस तरह का किला बने, उस किले की जो डिटेल है, चतुरंगनी सेना हो तो कैसी सेना हो, उसमें कैसे परफेक्ट सैनिक हों, ये सारा कुछ डिटेल के साथ वो समझाते हैं। राजकुमार है तो उसने सीखा ही सारी बातें, और धर्म सिखाते सिखाते साथ साथ ये भी सिखाया, ये भी तो धर्म है, राज करने वाले का धर्म है कि अपनी प्रजा की रक्षा करनी है। तो ये सारा कुछ इस बात का सबूत है कि उस समय चाहे राजकुमार हो तो राजकुमार की तरह उसको शिक्षा दी जाएगी, कोई और गृहस्थ तो उसकी शिक्षा दी जाएगी, पर सीखेगा जरूर, शिल्प अवश्य सीखेगा।
जी गुरुजी, गुरुजी अभी अभी जैसा कि आपने हमें समझाया कि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ हमें शिल्प की विद्या भी आनी चाहिए। गुरुजी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब वक्त होता है दर्शकों के प्रश्नों का। तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी पहला प्रश्न पूछ रहे हैं राजा चौधरी जी मुंबई से। वो कहते हैं कि गुरुजी हमारे देश में धर्म के नाम पर इतने सारे पर्व उत्सव होते हैं और सबको खुश रखने के लिए छुट्टियां भी दी जाती हैं, इससे देश की हानि होती है, तो क्या धर्म हमें अपना काम करने से रोकता है?
बेटी एक बात समझनी चाहिए कि भारत एक महान राष्ट्र है, विशाल राष्ट्र है, पहले भी आज भी, और ये एक विशेषता है कि यहाँ पर अनेक संप्रदाय हैं, संप्रदाय बहुल देश है, अच्छी बात है, सारे संप्रदाय यहाँ पर सुखपूर्वक रहें। तो जो शासक है उसे ये देखना होता है कि किसी भी संप्रदाय के मन को भावना को चोट तो नहीं लग रही, इस संप्रदाय वालों के पवित्र को पर्व पर तो छुट्टी दे दी और इस संप्रदाय वालों के पर्व पर छुट्टी नहीं दी, क्या करें, सबको खुश रखने के लिए छुट्टियां दे। इससे मैं जानता हूं, खूब समझता हूं कि हमारे वर्किंग डेज खराब हो रहे हैं, लेकिन समझदारी इस बात में है कि एक और हमने अपने वर्किंग डेज तो का नुकसान किया, अब इसका उपयोग कैसे करें, इस समय का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। किसी भी संप्रदाय का कोई पर्व हो तो एक बात तो हर संप्रदाय वालों को समझना होगा कि हमारा त्यौहार ऐसा न हो जो अन्य संप्रदाय वालों के भावनाओं को चोट पहुंचाए, पहली बात। अब जो भी त्यौहार हो किसी भी संप्रदाय का, सारे लोग मिलकर के मनाएं, ये त्यौहार तो अमुक संप्रदाय का है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तो भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, तो तुम्हारे वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स नष्ट हुए उससे ज्यादा कल्याण होगा। देश में जितने जितने अन्य संप्रदायों के साथ, बहुत संप्रदायों के साथ प्यार मोहब्बत रहेगी, उतना ही काम करने की शक्ति बढ़ेगी, देश उन्नति करेगा। तो ये छुट्टियां हैं रहे, लेकिन इसका सदुपयोग हो, ये ख्याल रखें।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं आनंद शुक्ला जी झांसी से। वो कहते हैं कि गत कुछ सदियों में भारत में जो संत हुए हैं उनके जीवन से हमें सचमुच प्रेरणा मिलती है। कबीर, ज्ञानेश्वर जी जैसे संतों की करुणा स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पुरातन काल में जो ऋषि हुए वे औरों को श्राप दिया करते थे, क्या उनके मन में करुणा नहीं थी?
बेटी जो क्रोध पैदा करके श्राप देता है वो न तो मुनि है, न ऋषि है, न संत है। और इस तरह के लोग कोई किसी एक युग की बात नहीं है, होते रहते हैं। चाहिए ये कि हम अपने मन को इतना निर्मल रखें कि कोई ऐसी बात न कहें जिससे किसी दूसरे की हानि हो, दूसरे का मन दुखे। ऋषि सही माने में ऋषि कौन होता है, जो ये रित है माने कुदरत का कानून है, निसर्ग के नियम हैं, इनकी एषणा करता है, गवेषणा करता है, परिवेषणा करता है, अपने भीतर अनुभव से जानता है कि ये नियम क्या हैं, धर्म के नियम क्या हैं। मैंने विकार जगाया और देख व्याकुल हुआ, मैंने विकार नहीं जगाया, व्याकुलता दूर हो गई, ये नियम है। इसको अनुभव से जानता है तो ऋषि है, उसके जीवन में धर्म उतरना शुरू हो गया। अन्यथा नाम के लिए ऋषि है, मुनि है, संत है, नाम का है, तो वो तो क्रोध भी जगाएगा, श्राप भी देगा। पहले देते रहे तो आज भी अगर श्राप बोल के नहीं देता, दुर्भावना पैदा करता है, तो वातावरण तो खराब होता ही है ना। तो धर्म अपने सही रूप में चले, भीतर सच्चाई को देखते देखते अपने मानस को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें। धर्म बड़ा कल्याणकारी है, तब भी कल्याणकारी था, आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा इसी प्रकार।
बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर इतनी अच्छी तरह से दिए। गुरुजी आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। दर्शकों ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क पीओ बैग नंबर 1 अंधेरी ईस्ट मुंबई 99 इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय जरूर देखिए ऊर्जा। नमस्कार। नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने गुरुजी से स्किल्स के बारे में जाना। किसी व्यक्ति का एक से ज्यादा हुनर को जानना बहुत जरूरी होता है। उस हुनर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ताकि किसी की हानि न हो पाए। तो आइए अगले मंगल के बारे में जानते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी से। गुरुजी
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी आज हम आपसे अगले मंगल के बारे में जानना चाहेंगे।
बेटी अगला मंगल है पुरानी भाषा में विनयो चे सुशिक्षितो, माने एक और बात सीखता है अपने पर संयम करने की, रोकने की। मान लो शिल्प सीखी, कोई टेक्नोलॉजी सीखी और मन में ऐसा भाव जागे कि मेरी ये टेक्नोलॉजी से मैं ऐसे वेपन्स बनाऊं जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो, केमिकल वेपन्स बनाऊं, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाऊं जिससे लाखों आदमियों का नाश हो, ऐसा भाव आता है मन में तो वो शिल्प का दुरुपयोग हुआ। उस पर रोक लगे, अंदर से खुद संयम करे कि मैं कोई गलत तरह का काम शिल्प के रास्ते कहीं से गलत काम नहीं करूंगा।
गुरुजी इसके बाद कौन से मंगल की बारी आती है?
बेटी पढ़ लिया लिख लिया शिल्प भी जान लिया, व्यवहार करना नहीं आया, बोलना नहीं आया, बातचीत करनी नहीं आई। ठीक से बातचीत नहीं करेगा तो स्वयं भी दुखी रहेगा, अपने परिवार वालों को दुखी करेगा, अपने मित्रों को दुखी करेगा, समाज के अन्य लोगों को दुखी करेगा। बहुत जरूरी है बोलना सीखे, कैसे बोले, ऐसी वाणी नहीं बोले जिससे स्वयं भी दुखी हो जाए और भी दुखी हो। तो ये वाणी कैसी बोलनी चाहिए ये सीखना भी एक उत्तम मंगल है। सुभाषित वाणी हो, धर्म की वाणी हो, प्यार की वाणी हो, सच्चाई की वाणी हो, इनमें सबसे प्रमुख है सच बोलना। आदमी जब झूठ बोल के किसी को ठगना चाहता है तो उसको होश नहीं रहता, मैं किसको ठग रहा हूं, अपने आप को ठग रहा हूं, ऐसी आदत बना रहा हूं कि अपना मतलब साधने के लिए झूठ बोलो, तो ऐसी आदत हमेशा हानिकारक होगी। क्योंकि सत्यमेव जयते नानृतम, झूठ की जीत नहीं होती, हमेशा सच की जीत होगी। हमेशा यह नियम रखेगी, बोलेंगे सच ही, लेकिन सच बोलने में भी हमेशा ख्याल रखेंगे किसी को मन दुखाने की बात नहीं करेंगे। और एक बात ख्याल रखनी होती है, कि बोलने में कभी कभी एक पागलपन होता है कि अपनी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के की, दूसरे की निंदा बढ़ा चढ़ा के की, धर्म की बात नहीं हुई। हमारे जो संत हैं बार बार उन्होंने कहा कि जो परनिंदा की बात है, परनिंदा सम अग्नि भाई, दूसरे की निंदा करने से इतना बड़ा पाप है, क्योंकि भीतर से हमने अपने मानस को मैला करना शुरू किया तब ना ऐसा करेंगे। तो अपने यहाँ के परवर्ती कवियों ने कहा, तुलसी जे कीरत चाहिए, माने जो कीर्ति चाहिए अपनी, पर की कीरत खोई, दूसरे की कीरत को नष्ट करके अपनी कीरत जो आदमी जमाना चाहता है, अपना यश अपनी प्रशंसा कायम करना चाहता है, अरे तिनके मुँह मसी लागी है, उनके मुंह पर कालख लगती है, और कालख भी ऐसी कि मिटे न मरिए धोए, सारे जीवन भर धोता रहेगा वो कालख, मिटने वाली नहीं है। तो कभी भूल करके भी ऐसा काम न करे कि अपनी प्रशंसा, अपना यश, अपनी कीर्ति के लिए किसी दूसरे की कीर्ति को नष्ट करने का काम गलत काम है, सुभाषित नहीं है। अपनी बड़ाई क्या करे, अगर कोई गुण है अपने में तो अपने आप मालूम होगा, लोग जानेंगे, स्वयं अपनी बड़ाई क्या करे। तो कहा, बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि मेरा लाख टका है मोल। हीरा कब कहने जाता कि मेरा लाख टका मोल है, जानते हैं लोग कीमती है। ऐसे ही आदमी में गुण आएंगे तो अपने आप लोग जानेंगे ये गुणवान व्यक्ति है, उसको ये कहने की जरूरत नहीं मैं कितना गुणवान। ये समझने की बात है, सुभाषित इस दिशा में भी होना आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन में ये सारे गुण आने चाहिए ताकि आगे सारा जीवन हमारा सुख शांति से बीते, हम भी सुख शांति से रहें, औरों के लिए भी सुख शांति का वातावरण निर्माण करें। इसलिए सुभाषित हमेशा बोलने में अच्छी वाणी ही बोले।
जी गुरु जी, वाणी ही व्यक्ति की सही पहचान जाहिर करती है,
बिल्कुल,
और उतना ही कठिन है उस पर कंट्रोल करना। गुरु जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरु जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारी वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए, पर ऐसा कई बार होता है कि हम कड़वी बातें बोल जाते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर ऐसा क्यों होता है?
वही तो सीखना है ना बेटी, हमारा स्वभाव बिगड़ गया कि जब बोलते हैं तो ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे लोग दुखी हों, हम भी दुखी हों, लोग को भी दुखी करें। आखिर आदमी बोलता किस लिए है कि कोई सुने, और सुने तो सुनकर खुश हो, सुने और सुनकर व्याकुल हो, तो क्या बोलना हुआ ये, ना बोलना अच्छा, मुंह बंद रखते। तो इसको खूब समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो अपने यहाँ एक वाणी चलती है, कर्कश बोले कागलो, कागलो माने कौआ, कौआ बहुत कर्कश बोलता है, कर्कश बोले कागलो और कोयल मीठा बैण, कोयल बोलती है तो बहुत मीठे आवाज दोनों की है, एक कर्कश है एक मीठा है। एक हियो व्याकुल करे, एक का बोलना ऐसा है कि व्याकुल कर देता है, लोगों के हृदय में व्याकुलता भर देता है, और एक बढ़ावे चैन, और दूसरे का बोलना ऐसा है जिसे सुनकर के मन में बड़ी शांति, बड़ा चैन, बड़ा सुख मालूम होता है। तो हमें समझना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं उसका असर दूसरों पर क्या पड़ रहा है, ये होश नहीं है तो बुरी आदत में पड़ गया, उसे बदलना होगा। ये जो विष हमारी वाणी में है बहुत खतरनाक है, कंट्रोल करना जरूरी है। तो कहा, कांजी का सा विष भरया, कांजी होती है विष की तरह, अरे बोलिया वचन कठोर, विष भरे वचन बोलता है कांजी के, मना दूध न फाड़ता, मनो दूध है, कांजी के दो बूंदे पड़ेगे पड़ जाएगा, मना दूध न फाड़ता जरा न आयो जोर। क्या किया, बोल ऐसे बोल दिए कि जहां मैत्री का माहौल था, दूध था इतना अच्छा, सारा वातावरण दूध से भरा हुआ, फाड़ दिया उसे, हानि कर ली ना। इसीलिए हमारे एक कवि ने कहा कि खीरा सिर से काट कर और मलिए नमक लगाए, कोई कोई खीरा खारा होता है ना तो खा नहीं सकते उसे, सिर काटा थोड़ा उसमें नमक लगाया और रगड़ा, तब खाते हैं, उसका खारापन निकल जाए। तो खीरा सिर से काट कर और मलिए नमक लगाए, रहिमन कड़वे मुखन की चाहिए तो यही सजा है। कड़वे मुंह वालों की यही सजा होती है। सिर काटो, काटो और नमक छिड़को, काटो और नमक छिड़को। तो भाई क्यों ऐसा काम करें, क्यों अपने आप को कड़वा बनाएं कि ऐसा दंड भुगतना पड़े। जगत दुखी विष वचन से दुख स्वयं भी पाए, लोगों को दुखी बनाता है, खुद भी दुखी होता है, परिणाम क्या होता है, देख विषैले सांप का मुंह कुचला ही जाए। सांप का मुंह जहर है उसमें, तो जब देखेंगे तो पहले उसका मुंह कुचलेंगे, जान से मारने के पहले उसका मुंह कुचलेंगे, जान से तो मारा ही जाएगा क्योंकि मुंह में जहर भरा है। तो लोगों को जहर की वाणी सुनना नहीं चाहते कोई भी, तो दंड मिलता है। आदत ऐसी डाल ली कि सांप कैंचुली त्याग दे पर विष त्यागो नहीं जाए। अरे कैंचुली तो निकाल दी, ऊपर की स्किन निकाल दी, भीतर जहर तो वैसा का वैसा है, क्या मिला इससे। ये मंगल के रास्ते चलने वाले को बहुत सजग रहना है। मेरी वाणी ऐसी न हो जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, कोई दुखी हो, क्योंकि कोई दुखी होगा मुझे भी दुखी होना पड़ेगा। दंड मिलेगा मेरे इस कटु वचन से, दंड मिलेगा इस कटु वचन से, प्रकृति के नियमों के अनुसार भी। कटु वचन बोलेगा तो अंदर विकार जागेगा, विकार जागेगा व्याकुल होंगे। तो ये बात धर्म की बात कम उम्र से ही सीख लेनी चाहिए कि हम कैसी वाणी बोलें, कैसी वाणी बोलें।
जी गुरुजी शुक्रिया, ये बात तो जीवन में बहुत ही उपयोगी है। गुरुजी इसी विषय में और जानकारी पाना चाहेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुजी जैसा कि आपने ब्रेक से पहले कहा कि अच्छी और सीधी वाणी का असर हमेशा अच्छा ही होता है, तो क्या आप इस बात को उदाहरण के द्वारा या कहानियों के द्वारा समझाएंगे?
हाँ बेटी, अनेक उदाहरण हैं। भगवान बुद्ध का ही उदाहरण ले, माने उनकी वाणी में इतना माधुर्य था और एक मेटालिक वॉइस थी, तरंगों की निन्नादी वाणी थी, बोलने से सुनने वाले के हृदय तक पहुंचती थी और तरंगें पैदा कर देती थी। तो लाभ ये होता था कि जो लोगों के पास पुरानी पारमिताएं हैं, पुण्य है, उनकी वाणी सुनते ही सारे शरीर में उनके तरंग जाग पड़ती थी। तो वो तरंग जागते 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 तरंगों के परे की अवस्था, तरंगातीत अवस्था, मुक्त अवस्था में, स्रोत में पड़ गए, मुक्ति के स्रोत में पड़ गए। ऐसा होता था उनकी वाणी का प्रभाव। अशोक की पत्नी महारानी असंध्यमित्र, उसने जब सुना कि भगवान की वाणी ऐसी थी कि सुनते सुनते लोगों में धर्म जाग जाता था, तो कैसी थी भगवान की वाणी, कैसी थी, उसके मन में जिज्ञासा जागी। तो अब क्या करें, भगवान तो है नहीं, तो एक कार्विक पक्षी होता है, उसकी वाणी भी इसी प्रकार की। तो लोग वो पक्षी को ले आए, देखा देखे जैसी इसकी वाणी है ना, बिल्कुल निन्नादी नाद पैदा कर दे वैसी भगवान की, इससे बहुत ऊंची। उसको सुनकर के उसने मन में सोचा, अरे ये इतनी मधुर है और इतनी हृदय ग्राही है तो भगवान की तो न जाने कितनी होगी। बस चिंतन मात्र से सारे शरीर में तरंगे जाग गई उसके और वो श्रोतापन्न हो गई, श्रोत अवस्था में पड़ गई। तो वाणी का उच्चारण भी कैसा हो, सत्य है, मधुर है, वो अपनी जगह ठीक होने चाहिए, साथ साथ उसका उच्चारण कैसा हो जो दूसरों के हृदय तक पहुंच जाए, तो ज्यादा कल्याणकारी होती है। एक कहानी और, एक माली अपने तालाब में उसने कमल के फूल खिलाए, बहुत खूबसूरत फूल, लेकिन बेचारा नकटा था। तो एक भाई उसके पास आया, कहता अरे वो नकटे, तो मुझे दो दो फूल दे दे, तो इसके पुण्य से जैसे मूंछ के बाल काट दें तो फिर आ जाते हैं, ऐसे तेरे नाक भी फिर आ जाएगी, तेरे दो फूल दे दे मुझे। उसने डांट के निकाला, उसका अपमान हुआ ना, दुखी हुआ। दूसरा आया, अरे नकटे माली मुझे दो फूल दे, तो जैसे खेत में बीज डालने पर पौधा उगता है वैसे तेरा नाक उग जाएगा। फिर निकाल दिया उसको मार करके, गुस्सा करके। तीसरा आया, उसने बड़े प्यार से कहा, माली जी हमारे घर में आज उत्सव है, पूजन है, हमें आप दो फूल दोगे तो हमारा पूजन बहुत अच्छा होगा, संपन्न होगा। माली प्रसन्न हुआ, बात तो वही है, किस ढंग से कहा, उसने दो इन्हें चार फूल दे दिए उसे। तो कहने का तरीका कैसे कहते हैं हम, किसी का मन दुखाने वाली बात कहेंगे तो परिणाम कहाँ अच्छे आएंगे, और ऐसी बात कहेंगे किसी को प्रिय लगेगी तो अपने आप परिणाम अच्छे आएंगे। तो असर होता है बोली का, माने पशुओं पर भी होता है। घर में हम कुत्ते पाल रखते हैं, बिल्ली पाल रखते हैं, हम किस तरह से बोलेंगे उनका असर उन पर होगा। हम डांट के बोलेंगे कुत्ते बिल्ली भी समझेंगे, प्यार से बोलेंगे कुत्ते बिल्ली भी समझेंगे, अरे बिल्कुल अबोध बालक है वो भी समझेगा। गुस्से से बोलेंगे रोने लगेगा, प्यार से बोलेंगे हंसने लगेगा, अरे वही क्यों, पेड़ पौधों पर भी असर होता है। मुझे ख्याल है हमारे गुरुदेव सुबह सुबह 4 बजे जो पेड़ पौधे लगा रखे थे उनको पानी देते थे और मैत्री, मंगल मैत्री देते थे, उन तरंगों से जो फूल खिलते थे, सामान्य दुनिया में एक तरह के फूल हैं इनके विशेष होंगे, जो फल लगते थे इनके विशेष होंगे, वाणी का असर पड़ता है। तो हम परिणाम अच्छे आए हमारे जीवन में, हमारे हर बोल के परिणाम अच्छे आए इसका ख्याल रखें तो कल्याणी होगा, अपना भी कल्याण होगा, वातावरण का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। तो सुभाषित बहुत आवश्यक है।
शुक्रिया गुरुजी, आप इन उदाहरण द्वारा आपने ये स्पष्ट किया कि अच्छी वाणी का असर हमेशा अच्छा ही होता है, और इस प्रोग्राम के द्वारा आपकी वाणी हमारे दिल की गहराइयों तक छू जाती है। गुरुजी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब वक्त होता है दर्शकों के प्रश्नों का। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं तुरंत। एक बार फिर आप सभी का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी पहला प्रश्न पूछ रहे हैं राजेश चौहान जी कानपुर से। वो कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं, क्या सचमुच कोई चक्रवर्ती सम्राट था?
भगवान बुद्ध ने एक आदर्श राजा का चित्र दिया हमें, बहुत शक्तिशाली हो, एक समुद्र के तट से लेकर दूसरे समुद्र के तट तक की सारी भूमि पर उसका आधिपत्य हो, चक्रवर्ती राजा हुआ। लेकिन उसके पास सेना होनी आवश्यक है, चतुरंगिनी सेना। एक बात उसमें देखी हमने, तो पहले तो सुनकर के थोड़ा मन में एक क्वेश्चन उठाया, क्या बात हुई, भगवान कहते हैं वो सेना तो रक्षा करेगी, देश की रक्षा करेगी, राजा की रक्षा करेगी, राजा उस सेना की रक्षा करेगा, राजा सेना की रक्षा करेगा, ये क्या बात हुई। तुरंत समझ में आया क्या कहना चाहते हैं भगवान, कि सेना अगर उसकी संख्या घटा दी, छोटी कर दी, तो कैसे उसकी रक्षा हुई, दुश्मनों की सेना ज्यादा बड़ी है, इसको खत्म कर देगी लड़ाई होते ही। और दूसरे आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र राजा के उसके पास होने चाहिए, नहीं तो दुश्मन के पास ज्यादा अच्छे शस्त्र हैं तो मार खा जाएगी। तो उसकी रक्षा राजा करता है तो किस माने में करता है, उसको मोस्ट मॉडर्न वेपन्स जो रक्षा के लिए आवश्यक है वो देता है, और उसकी संख्या पर्याप्त रखता है ताकि वो कहीं हार ना जाए। उसको हमला नहीं करना है, पर हमला करने वालों से देश की रक्षा तो करनी है ना, तो राजा उसकी रक्षा करता है, वो राजा की या राज्य की रक्षा करती है, चतुरंगनी सेना। अशोक ने अपने आप को कभी चक्रवर्ती राजा नहीं कहा, लेकिन उसमें सारे गुण तो चक्रवर्ती राजा के थे, तो पड़ोसी देशों में उसको द्वीप चक्रवर्ती कहा गया। तो द्वीप क्यों, भारत को उन दिनों जम्बू द्वीप कहते थे, आज उसका छोटा सा नाम, एक छोटे से क्षेत्र का नाम जम्मू हो गया, सारा देश जम्बू द्वीप कहलाता था। तो पड़ोसी लोग उसे द्वीप का चक्रवर्ती है ये, और उसमें सारे गुण थे। तो चक्रवर्ती राजा का मतलब ये हुआ कि केवल भूमि का आधिपत्य ही नहीं है, उसके पास उसकी रक्षा का भी पूरा प्रबंध है।
गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं प्रेम सिंह जी औरंगाबाद से। वो पूछते हैं कि आपने पहले समाधि के बारे में समझाते हुए शिव जी का जिक्र किया था।
ठीक
गुरुजी, मैं शिव जी का भक्त हूँ, आप हम शिव भक्तों के लिए कुछ कहेंगे?
अरे कोई व्यक्ति शिव जी का भक्त हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। शिव शब्द का अर्थ ही मंगल होता है, तो मंगल की भक्ति माने जीवन में मंगल आने लगे, शिव भक्त होना बहुत बड़ी बात है। शिव जी के बारे में अपने यहां अनेक कथाएं हैं। एक कथा, सुर और असुर, ये कथाएं हैं, इनमें युद्ध होता है। अब कौन हारे कौन जीते कोई फैसला नहीं हुआ, तो दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि हम समुद्र का मंथन करेंगे और उसमें जो निकलेगा वो बांट लेंगे। लड़ाई बंद, समुद्र का मंथन करेंगे। किया समुद्र का मंथन, कहानी है, कथाएं हैं, तो उसमें से निकली बहुत सी चीजें निकली। अमृत भी निकला, विष भी निकला। अमृत तो सब पीना चाहे, विष कौन पिए? अब कैसे बांटे उसको, कठिनाई खड़ी हो गई। तो शिव जी कहते हैं, मत घबराओ भाई, अमृत तुम लोग पी लो सब, ये विष लाओ मैं पी लूंगा। विष पी गए, हलाहल विष पी गए, कंठ नीला हो गया, तो इसलिए नीलकंठ कहलाए। कंठ नीला हो गया, माथे पर शिकन नहीं है। माथे पर शिकन तो वैसे भी नहीं है, सारे शरीर पर नाग लिपटे हुए हैं, काले नाग लिपटे हुए हैं, और ये शांत हैं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। आप हलाल विष पी लिया, शांत हैं, शांत हैं। इसका एक प्रतीक, अपने यहां सारी बातें प्रतीकों की भाषा में, संकेतों की भाषा में कही गई। एक प्रतीक, माथे पर चंद्रमा लगा दिया, चंद्रमा की तरह शीतल है इसका माथा, इसके माथे में गर्मी नहीं आई इतना जहर पी करके भी। उतने से बस नहीं हुआ तो सिर पर से गंगा, हर 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 गंगा बहती है और शीतलता। ये क्या हर हर गंगा है? जब साधना करते हैं तो एक अवस्था शीघ्र आ जाती है जो सारे शरीर में हर हर गंगा, हर हर गंगा, सिर से पांव तक एक प्रवाह चलता है चैतन्य का, और उसमें आदमी बिल्कुल शांत और सुखी रहता है। शिव का भक्त हो और ऐसा अभ्यास करे नहीं तो भक्ति ठीक नहीं हुई। उस तरह का अभ्यास करें, हर हर गंगा अपने भीतर चलनी चाहिए। एक व्यक्ति शिव का भक्त है, शिव के गुणों को याद करे। प्रतीकों की भाषा में कहा गया, कैसे भी कहा गया, गुण है। उन गुणों को हमारे जीवन में कैसे धारण करें, तो फिर शिवरात्रि मनानी कल्याणकारिणी हुई। शिव का भक्त होना कल्याण की बात हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रणाम।
बहुत सुखी हो बेटी।
प्रणाम माताजी। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप हमें अपने प्रश्न और सुझाव जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है, ऊर्जा, जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में हार्दिक स्वागत है। भगवान बुद्ध के बताए गृहस्थ जीवन में उपयोगी उत्तम मंगल की श्रृंखला में हमने पिछली बार वाणी को अच्छी रखने के लाभ जाने। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी के साथ।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माताजी। गुरुजी, आज हम आपसे गृहस्थ के लिए अगले उत्तम मंगल के बारे में जानना चाहेंगे।
गृहस्थ के लिए अगला उत्तम मंगल है माता पिता की सेवा शुश्रूषा करनी, माता पिता की देखभाल करनी, उनके खाने पीने की, रहन सहन की, दवा दारू की, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी, और जब वृद्ध हो जाएं तो और जितनी आवश्यकताएं बढ़ती हैं उन सब की पूर्ति करनी। माता पिता जननी हैं, जनक हैं। कहने को तो कहते हैं कि कोई ब्रह्मा ने हमें जन्म दिया, कौन जाने, कोई माने कोई ना माने, प्रत्यक्ष सत्य तो ये है कि माता ने हमें जन्म दिया, पिता का बिंदु अपने गर्भ में धारण करके किस तरह उसे पालती है, पोसती है, अपने शरीर के कण कण से, मांस से, मज्जा से, हड्डी से, त्वचा से, कण कण से उसका निर्माण करती है, उसके प्राणों में अपना प्राण डालती है, उसे जीवन देती है, एक मनुष्य का निर्माण करती है, तो वो ब्रह्मा है। भगवान बुद्ध ने माता पिता को ब्रह्मा कहा, इसी अर्थ में कहा। और फिर जब उसे तैयार करती है मनुष्य के रूप में, 9-10 महीने लगते हैं, पेट में उसे उठाई फिरती है, उसका बोझ नहीं मानती, मन में मौज जागता है, बच्चे की अलन चलन होती है भीतर, तो उसे पीड़ा नहीं मानती, मन में एक हर्ष जागता है। और 9-10 महीने के बाद जब जन्म देती है, प्रसव की पीड़ा, कितनी पीड़ा में से गुजरती है, लेकिन जन्म देने के बाद बच्चे का मुंह देख करके गदगद हो जाती है, उसे छाती से लगा करके मूद से भर जाती है, दुख का नामो निशान नहीं। और जन्म देने के बाद भी पालती है, पोसती है, अपने शरीर से, अपनी छाती से उसका आहार तैयार करती है, अपने स्तनों से अमृत जैसा आहार उसे देती है, और ये तब तक देती रहती है जब तक कि वो स्वयं खाने पीने लायक न हो जाए। पिता भी इसी प्रकार साथ देता है, खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कमाता है, और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सचमुच बड़ा उपकार है, माता पिता दोनों का बहुत बड़ा उपकार है, क्या कोई बदला चुका सकेगा। तो खूब सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, ये उत्तम मंगल है। भगवान ने जैसे माता पिता को ब्रह्मा कहा, वैसे ही उन्हें आदि आचार्य कहा, आचार्य हैं। पहली बोली अपने माँ और बाप के मुंह से जो बोली निकलती है वो सीखता है बच्चा, माँ के दूध के साथ जो बोली सीखता है वो मातृभाषा, कितने प्यार से सीखता है। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी देखभाल करते हैं, गरीबी हो तो भी स्वयं कष्ट उठाएंगे, बच्चे की देखभाल करेंगे, गरीबी है पूरा भोजन नहीं कर सकते, स्वयं भूखे रह जाएंगे, अपने संतान को पूरा भोजन देंगे, माता पिता के उपकार की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। जैसे भगवान ने माता पिता को ब्रह्मा कहा, माता पिता को आदि आचार्य कहा, पहले शिक्षक हैं, ऐसे उन्हें आदि देव कहा, देवता हैं, प्रथम देव वही हैं पूजने लायक। उन दिनों और आज भी कभी कभी लोग पूरब दिशा को देख करके नमस्कार करते हैं, किसी को ऐसे नमस्कार करते हुए देखा तो भगवान ने कहा, अरे इस दिशा को क्या नमस्कार करते हो, इस पूरब दिशा के प्रतीक तुम्हारे माता पिता हैं, अपने माता पिता को नमस्कार करो, वो प्रत्यक्ष देव हैं, बाकी पता नहीं काल्पनिक देव हैं, प्रत्यक्ष देव को नमस्कार करो, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। माता पिता को जो देवता की तरह पूजता है, जीवन में मंगल ही मंगल, खूब मंगल प्राप्त करता है।
जी गुरुजी, गुरुजी आजकल के इस नए दौर में ये भावनाएं मानो जैसा अपना अस्तित्व ही खो बैठी है। आपसे इसी विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी आप बता रहे थे माता पिता के महत्व के बारे में, आजकल की नई पीढ़ी पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स का उचित सम्मान नहीं करते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
दुर्भाग्य है बेटी, माता पिता की सेवा करने के बजाय उनका अपमान करे, निरादर करे, उनकी उपेक्षा करे, बड़ा अमंगल होता है, समझते नहीं। अपने यहां माता के प्यार को दर्शाने वाली एक लोक कथा, एक पुत्र विवाह होने के बाद अपने पत्नी के प्रभाव में इतना आया और पत्नी को सास अच्छी न लगे, ऐसा होता रहता है, तो बात इतनी बड़ी कि पत्नी ने कहा कि तुम्हारी मां का सिर काट के ले आओ तो मैं संतुष्ट होऊंगी। पुत्र भी नालायक, अच्छी बात, मां का सिर काट के लाता हूं। मां का सिर काट के दौड़ा दौड़ा चला मां की पत्नी की ओर उसे देने के लिए। रास्ते में कहीं खूंटे से टकरा गया, गिर पड़ा, मां का सिर गिर पड़ा। कटे हुए सिर से आवाज आई, अरे बेटे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई? तो उसे होश आता है, मैंने इसका सिर काटा और फिर भी ये मेरा मंगल चाहती है, मुझे कहीं चोट तो नहीं लग गई? पूत कपूत भले हो लेकिन मात कुमाता कभी न होए, रोम रोम से यह ध्वनि निकले बेटा तेरा मंगल हो, बेटा तेरा मंगल हो। ये मां का प्यार है, भूल जाते हैं तो अपना ही बुरा करते हैं, अनर्थ करते हैं, माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें कष्ट देते हैं, उनका अनादर करते हैं, बड़ा अमंगल होता है।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी आशा करते हैं कि अभी अभी आपने जो समझाया वो आजकल की नई पीढ़ी जरूर समझ पाए। इसके आगे कौन सा मंगल है गुरुजी?
बेटी इसके आगे का उत्तम मंगल है पुत्र और दारा का संग्रह करना। यहां पुत्र से मतलब है पुत्र और पुत्री दोनों, और दारा माने विवाहिता पत्नी, भारिया। इनका संग्रह करना माने इनको जोड़ के रखना। अच्छा गृहपति वही होता है जो पत्नी और बच्चों को संभाल के रखता है, जोड़ के रखता है। पत्नी को कैसे जोड़ के रखता है? अपने पुरातन भारत में विवाह संस्कार कई प्रकार के होते थे। उनमें एक विवाह संस्कार ऐसा होता था जो अभी भी पड़ोसी बुद्धानुयायी देशों में चलता है, अभी भी उसी प्रकार। वर और वधु दोनों पास पास बैठेंगे, परिवार के लोग, बुजुर्ग लोग इकट्ठे होंगे, उनकी उपस्थिति में ये दोनों एक पात्र में जल डालेंगे, दोनों अपनी ओर से जल डालेंगे, फिर उस पात्र में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, पानी ग्रहण करेंगे। क्या अर्थ इसका? कि हम इस प्रकार जुड़ गए हैं जैसे ये पानी, दोनों की ओर से डाला हुआ पानी अब अलग नहीं हो सकता। कैसे अलग करे? तो जैसे ये पानी जुड़ गया, अलग नहीं हो सकता, वैसे जीवन भर हम अलग नहीं होंगे। ये प्रण, ये प्रतिज्ञा जीवन को सुखी बनाती है। एक दूसरे के प्रति इतना प्यार रहता है, दोनों आदर्श जीवन जिएंगे, बच्चों को संग्रह करके रखेंगे, जोड़ के रखेंगे। कैसे जोड़ें? 7 बरस की उम्र तक बच्चों को जो सिखाएंगे वो बड़े प्यार से, लाड से, ताकि उनको भार न लगे, बड़े प्यार से सिखाएंगे। 8 बरस से 16 बरस की उम्र तक प्यार तो रहेगा, पर जहां जहां जरूरत होगी वहां सख्ती का व्यवहार भी करेंगे, प्रताड़ना भी देंगे। और 16 वर्ष के बाद बात बदल गई, अब तो 16 वर्ष के हो गए, मित्र हो गए। अब उसके बाद जो व्यवहार होगा वो मित्र का व्यवहार होगा, जो कुछ सिखाएंगे जैसे दो मित्र आपस में बात करते हैं। ये आदर्श, ये बड़ा मंगल है, बड़ा उत्तम मंगल है। जोड़ के रखना, टुकड़े नहीं होने देना।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, बच्चों के किस एज में उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में आपने हमें अभी जानकारी दी। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। गुरुजी, आप हमें सुख शांति देने वाले कर्मों के बारे में बताएंगे?
बेटी गृहस्थ हैं तो मेहनत करके, परिश्रम करके, पराक्रम करके, ईमानदारी के साथ धन कमाना होता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि बस धन कमाना ही लक्ष्य हो गया, खूब संचय करे, संग्रह करे, परिग्रह करे और किसी को कुछ दे नहीं, तो फिर कमी आ गई। फिर तो धन के प्रति आसक्ति होगी, चिपकाव होगा, और देता है तो मन में करुणा जागेगी, मैत्री जागेगी, सद्भावना जागेगी, औरों को बांटता है, समविभाग करता है। केवल इकट्ठा करता चला जाए तो जैसे पानी इकट्ठा हो जाए तो सड़ने लगता है। बहता पानी निर्मला, और आया और गया, और आया और गया, अपने परिवार पोषण के लिए भी और औरों को आवश्यकता उनको देने के लिए भी। दान देना बहुत आवश्यक है गृहस्थ के लिए, पर दान कैसे दे अगर भयभीत होकर दे रहा है, या इस लालच से दे रहा है कि दान देने से सरकार हमें कोई लाइसेंस दे देगी, या इस अहंकार से दे रहा है, उसने इतना दान दिया मैं देखो उससे और ज्यादा देता हूं, या किसी गरीब पर घृणा करके दे रहा है। मंगल नहीं अमंगल हुआ, चित्त की चेतना गलत है, मैल नहीं होना चाहिए दान देते वक्त। बदले में कुछ पाने की भावना नहीं होनी चाहिए, देना है, देने के लिए देना है, लोक कल्याण के लिए देना है। सारे दानों से बढ़कर के धर्म का दान होता है। धर्म का दान जिसे मिल जाए, धर्म मिल जाए तो इसी जीवन के दुखों के बाहर नहीं, जन्म मरण के दुखों के बाहर निकल जाए। तो धर्म का दान सारे दानों से ऊंचा। दान देते हैं तो जो पाता है वो प्रसन्न होता है, देने वाला प्रसन्न चित्त से देता है वो प्रसन्न होता है, तो चारों ओर मंगल ही मंगल फैलता है। गृहस्थ के लिए दान देना अत्यंत आवश्यक है।
शुक्रिया गुरुजी, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि कैसे गृहस्थ अपने पुण्य पारमी को बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, ऊर्जा का अगला भाग आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, तो जाइएगा मत, लौटते हैं तुरंत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं मिस्टर आयर चेन्नई से। वो कहते हैं कि कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे झूठ बोलने से किसी का भला होता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे में थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या हर्ज है?
हर्ज है बेटी। एक तो ये कि कोई कैसे समझे कि सचमुच झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, और दूसरा ये कि आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने की, हर बार झूठ बोलेगा फिर उसका न्यायकरण करेगा, मैंने तो इसलिए झूठ कहा कि उससे भला होता है, मैंने इसलिए झूठ कहा कि उससे भला होता है, झूठ नहीं कहता तो और क्या कहता। आदत पड़ जाएगी, बचना चाहिए।
जी गुरुजी, शुक्रिया। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद जी बैंकॉक से। वो पूछते हैं कि आप गॉड शब्द से क्या समझते हैं? क्या परमेश्वर सभी सृष्टि का निर्माता है, या यूं कहूं कि क्या सारे विश्व का कोई निर्माता है?
बेटी, कोई सृष्टि का निर्माता है पहले ये माने, फिर उस निर्माता का कोई निर्माता है ये माने, फिर उस निर्माता का निर्माता कोई है। अरे उस जंजाल में क्यों पड़े। सही बात यह है कि जो सत्य है वो ईश्वर है, और जो परम सत्य है वो परमेश्वर है। सत्य क्या है? धर्म है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, रित है, निसर्ग का नियम है, यही ईश्वर है। इसीलिए हमारे यहां संतों ने अवईश्वर के लिए बहुत से शब्द इस्तेमाल किए, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, एक ही नाम है ईश्वर का, सत्तनाम, यानी सच्चा नाम। बस सत्य ही ईश्वर है, वही नाम है उसका, बस। तो कोई झगड़ा नहीं होगा। अब सत्य को कौन बनाने वाला, उसको कौन बनाने वाला का झगड़ा ही नहीं ना। प्रकृति का नियम है, इस नियम की सच्चाई को जानते हुए अपने जीवन को सुधारे। सत्य है, ईश्वर है, कल्याणकारी है।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रही हैं प्रगति सोलंकी जी यूके से। वो कहती हैं कि भारत में और विदेशों में अंधश्रद्धा, माताजी का आना, मैली विद्या के जानकार लोग हैं, इन सब में कितना सच है ये विस्तार से आप हमें बताइए।
पहली बात तो बेटी, अंधश्रद्धा में पड़ना ही नहीं चाहिए। आज एक अंधश्रद्धा जागी तो कल दूसरी जागी तो तीसरी जागी, तो कोई इस अंधश्रद्धा को ठीक कहेगा को उसको ठीक कहेगा, झगड़े ही झगड़े और मिलेगा क्या उससे। श्रद्धा जागनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। और श्रद्धा जागनी चाहिए सच्चाई के प्रति, सत्य के प्रति। सत्य जो अपने भीतर अनुभूति पर उतरता है उसके प्रति श्रद्धा जागे। इस सच्चाई के प्रति जितनी श्रद्धा जागेगी उतना मंगल होगा। और अंधश्रद्धाओं का तो क्या अंत आएगा। एक अंधश्रद्धा किसी की दूसरी अंधश्रद्धा और झगड़ेंगे आपस में, तेरी अंधश्रद्धा गलत मेरी सही। दूर रहे इनसे, कोई काम की बात नहीं। मन को निर्मल रखें, ये भीतर की सच्चाई को जानते जानते इसके प्रति सही श्रद्धा जागे, बड़ा मंगल होगा।
शुक्रिया गुरुजी, आपने अभी कितनी अच्छी बात समझाई कि सच्चाई के प्रति हमारी श्रद्धा जागनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है, ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार।